अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू द शो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे औरत मार्च और विमेन राइट्स के ऊपर। हमने औरत मार्च की, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, आपने उसकी पिक्चर्स, उनकी डिमांड्स और मुख्तलिफ उनकी वेबसाइट्स वगैरह को गो थ्रू किया होगा आपने। कुछ चीज़ें अजीब व गरीब हमें नज़र आईं और मैं समझता हूँ उन पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप औरत मार्च को देखें और उनकी पिक्चर्स में देखें तो हमें वहाँ पर एक फ़्रांस का फ्लैग नज़र आया और हमने सवाल, यानी एक सोचने वाला बंदा ये सोचता है कि औरत मार्च पर एक फ़्रांस का जो फ्लैग है, व्हाट डज़ इट मीन, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, क्या मतलब है उसका, क्या वाकई वो फ्रांस का फ्लैग था या वो किसी और चीज़ का फ्लैग था, एंड व्हाई आर दे डिस्प्लेइंग दैट फ्लैग। इसी तरीके से हमने कुछ ये भी देखा कि उनकी जो डिमांड्स थी, बहुत सी डिमांड्स, हालांकि वो औरत मार्च था, दे शुड ऑल रिलेट विद द वुमेन, बट हमने देखा बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं जो कि वुमेन से शायद रिलेट नहीं कर रही, वो जनरली मुख्तलिफ जो है वो एनवायरमेंट या इसी तरीके से ड्रग्स वगैरह के हवाले से उन चीज़ों से एसोसिएट हो रही हैं, तो व्हाट डज़ दैट मीन। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि उनकी मुख्तलिफ पोस्टर्स में या मुख्तलिफ जगहों पर नॉट टू मच obvious and prominent, but there were some indications of feminism as well. तो सवाल यह है कि इस औरत मार्च का ताल्लुक क्या फेमिनिज्म का है, क्या ये औरत मार्च फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है कि नहीं। इस तरह के कुछ सवाल मेरा ख्याल है जो भी बंदा उससे गो थ्रू हुआ होगा उसके जहन में आए होंगे। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हम चाह रहे हैं कि आज उस हवाले से डिस्कशन करें। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, क्या औरत मार्च का ताल्लुक वुमेन राइट्स के साथ है कि नहीं है, ये सारी डिस्कशन आज हम इंशाल्लाह इस हवाले से करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ पहली डिस्कशन को हमास भाई के साथ। एज़ यूजुअल मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट ब्रदर अहमद खान और ब्रदर हमास मौजूद हैं। जो सबसे पहली चीज़ मैं हमास भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली कॉमेंट ऑन दैट इंशाल्लाह एंड देन वी स्टार्ट अ डिस्कशन फ्रॉम देयर, कि औरत मार्च और वुमेन राइट्स आर दे द सेम थिंग? क्या औरत मार्च प्राइमरली वुमेन राइट्स की एक मूवमेंट है जिसकी प्राइमरी डिमांड औरत को उनके हकूक देना है, या दे हैव सम अदर बैकग्राउंड, सम अदर एजेंडा, या फिर वो कुछ और चीज़ें चाहती हैं? आफ्टर गोइंग थ्रू देयर डिमांड्स एंड आफ्टर गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट दे डिस्प्लेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये जो हमने टाइटल चूज़ किया यहाँ पर कि वुमन राइट्स वर्सेस औरत मार्च, ठीक है, वुमन राइट्स जो वर्ड है, आप बहुत सादा वर्ड है, इसका मतलब ये है कि औरतों के हकूक, ठीक है, औरतों के हकूक, और इसमें ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर आप ये एक है कि हम औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, इस्लाम भी औरतों के हकूक की बात करता है, कई डिफरेंट लोग जो हैं औरतों के हकूक की बात करता है, उन औरतों के हकूक को रीच किस तरह किया जाए, किस तरह अप्रोच किया जाए, वो चीज़ें एक डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजीज़ होती हैं। इस्लाम एक तरीके से अप्रोच करता है और दूसरी आइडियोलॉजी दूसरे तरीके से अप्रोच करती हैं, ठीक है ना। तो वुमन राइट्स जो है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है। अब उसमें जो औरत मार्च है, औरत मार्च एसेंशली ये जो लफ्ज़ तो औरत मार्च कहा जाता है और मतलब यानी हमारे सामने अपेरेंटली सामने आता है लफ्ज़ कि इससे यही प्रेमिस आता है कि जी यहाँ पर वुमन राइट्स की बात होगी और ये वो चीज़ें। दरअसल वुमन राइट्स एग्जैक्टली ये उस तरह स्ट्रिक्टली वुमन राइट्स नहीं है, ठीक है, ये दरअसल फेमिनिज़म की एक मूवमेंट है, ठीक है, उसको उन्होंने उसके अंदर ये मूवमेंट के अंदर टाइटल दिया औरत मार्च का, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने प्राइमरी इनका एजेंडा जो हमने सारा पढ़ा था और हमने लास्ट शो में भी ये चीज़ वाज़े की,
लास्ट शो में ऐसी चीज़ें भी थी जिनका वुमेन राइट्स से
वुमन राइट्स से ताल्लुक नहीं था,
राइट्स थे उसमें और भी दीगर चीज़ें थी जिनमें उनका स्पेसिफिकली वुमेन राइट्स से ताल्लुक नहीं था।
बिल्कुल बिल्कुल,
और इंशाल्लाह हम आज देखना चाहेंगे कि उनका किन चीज़ों के साथ ताल्लुक।
बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चीज़ क्लैरिफाई करेंगे कि मतलब यानी जो वो उनके हमने डिमांड्स में भी देखा कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जो स्ट्रिक्टली वुमन राइट्स नहीं है, ये एक फेमिनिज्म की मूवमेंट है, ठीक है, और फेमिनिज्म जो है वो भी एक एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म यहाँ पर सोशलिस्ट फेमिनिज्म है।
अच्छा,
जो कि स्ट्रिक्टली वुमन राइट्स से एसोसिएटेड नहीं है।
मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि बिफोर एक्चुअली गो थ्रू दैट, फेमिनिज्म एक बहुत कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं एंड आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स एंड वेरियस मीनिंग्स ऑफ फेमिनिज्म। तो जब हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की, तो सवाल ये है कि ये जो औरत मार्च है ये किस फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है और उसकी क्या बैकग्राउंड है? बिकॉज मेरा वैसे वाकई एक जनरल पर्सन के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि सडनली वुमेन्स डे के ऊपर एक औरत मार्च कहाँ से एकदम इतना एक बड़ा सर्कल नजर आ गया? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, व्हाट वाज देयर बैगेज बिहाइंड देम, राइट? तो फेमिनिज्म आपने कहा कैसे एसोसिएटेड है, विच टाइप ऑफ फेमिनिज्म आर वी टॉकिंग अबाउट हियर?
अच्छा हाँ जी, सबसे पहले जो फेमिनिज्म की जनरल डेफिनेशन है ना वो ये है कि सोशो पोलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, ठीक है, इससे मुराद ये कि सोशल इक्वालिटी और पोलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए सक्सेस की, ठीक है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से हो, इसी फ्रेमवर्क से हो, इसमें जारी बात है पॉलिटिक्स आ जाती है और डिफरेंट तरीक़ों से ये पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश होते हैं। तो जो यहाँ पर जो औरत मार्च वाली फेमिनिज़म है, जैसा कि आपने पूछा, वो बेसिकली स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट फेमिनिज़म है, सोशलिस्ट फेमिनिज़म है। फेमिनिज़म की अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो उसके अंदर शुरू में, ये शुरू जहाँ से हुई, इसमें लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियाज से शुरू हुई थी, जिसके अंदर जो कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म थी, जिन्होंने बात की थी कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए, और उसके साथ साथ
ये उस टाइम पे था जब औरतों को की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी।
हाँ जी बिल्कुल, ये बल्कि वेस्ट में नहीं थी, ठीक है ना, वेस्ट में, हम वेस्ट में स्पेसिफिक करेंगे क्योंकि वहाँ से ये राइज किए, क्योंकि कुछ और इलाके थे वहाँ पर डिफरेंट तरीके से।
तो ये अर्ली 20th सेंचुरी है,
ये 19th सेंचुरी, अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है उसके अंदर डेवलपमेंट, और फिर 20th सेंचुरी में ये काफ़ी ऊपर गया। तो इसके अंदर प्राइमरीली जो बहुत ही जल्द ना इसकी एसोसिएशन होगी फेमिनिज्म की, जो लिबरल फेमिनिज्म की एसोसिएशन होगी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की के साथ, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म के साथ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि आप
एक मिनट मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि शुरू जब हुई थी ये मूवमेंट, ये वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पोलिटिकल एरिना से शुरू हुई, ठीक है
जी जी,
और उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो उस डिमांड के अंदर।
हाँ जी हाँ जी।
तो ये चेंज कैसे हुई है सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के अंदर?
अच्छा, ये चेंज किस तरह हुई? क्योंकि दरअसल इसके अंदर आइडियाज़ जो हैं, जो कि थिंकर्स से वो इसमें आए हैं उस वाली साइड से, जो कि सोशलिस्ट एरा से, उसकी वजह से ये थिंकर इस तरह नहीं, क्योंकि इसकी जो आइडिया था ना वो बेसिकली वो ये डिग आउट करना चाहते थे कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये इनइक्वालिटी आती है सेक्सेस की। तो उन्होंने देखा कि एक जो प्रपोजल आया वहाँ पर, ठीक है ना, फेमिनिज्म की दरअसल मल्टीट्यूड ऑफ टाइप्स हैं, ठीक है, नॉन सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे पॉपुलराइज
सो कॉल्ड इस्लामिक फेमिनिज्म भी है।
हाँ, इस्लामिक फेमिनिज्म भी है, और यहाँ पर जो, लेकिन जो सबसे पॉपुलराइज्ड फेमिनिज्म की फॉर्म है ना वो यही है, सोशल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म।
तो फेमिनिस्ट ने क्या देखा सोशलिज्म के अंदर जो उनको अट्रैक्ट किया उस पर, उन्होंने उसको अपनाया, क्या चीज़ थी वो?
दरअसल इसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अथॉरिटी फिगर है, ठीक है ना, और आप देख सकें सोशलिज्म में क्या होता है, वो एक बर्जुआ, ठीक है ना, और प्रोलिटेरियट्स, ठीक है ना, यानी वर्किंग पुअर क्लास,
ठीक है,
और एक उसका जो हुक्मरान है जो कि उसके ऊपर सब्जुकेशन कर रहा है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसको इसी अंडरस्टैंडिंग से लिया कि
इन्होंने मर्द उसको वो जेंडर के अंदर
उन्होंने फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने देखा कि देखें जो मर्द है वो हुक्मरान है और वो ही हुक्मरान है और औरतों के ऊपर उनको सब्जुगेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से इस आइडिया, इस पर्सपेक्टिव
से देखा कि पॉलिटिकल पावर भी जो है मर्दों के पास है, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन उनके पास है,
ठीक है। तो इस वजह से
ये एक पैरेलल था दोनों चीजों
के, पैरेलल था, और इस वजह से सोशल फेमिनिज्म जो है वो
यानी इफ आई वांट टू समराइज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशलिज्म में क्योंकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के एंटी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और फेमिनिज्म ने भी यही समझा कि मर्द हमारे पैट्रियार्की से उन्होंने सफर किया एक किस्म का इन देयर व्हाटसोएवर मींस एंड वेज, उन्होंने समझा कि चूंकि वहां पे इस चीज के खिलाफ एंटी मूवमेंट है, तो उन्होंने समझा कि ये शायद वही मूवमेंट है जो हमें हमारे इस मकसद तक पूरा कर सके कि हम उस हायरार्की जो इवन जेंडर के अंदर मौजूद है उसको हम खत्म कर सकें।
हाँ जी, दरअसल हाँ जी, देखें सोशलिज्म है कि बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हायरार्की, इन शॉर्ट तो वो क्योंकि कहते हैं कि हायरार्की की वजह से जो है इनजस्टिस वगैरह पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ पर जो मर्द की हायरार्की है ना ये गलत है, तो ये आइडियाज़ इस तरह नहीं है कि मतलब, यानी उन्होंने ये मैच किया, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव शो किया कि ये पावर का मसला है, ठीक है ना, कि पावर ज़्यादा है इस वजह से ये इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, मर्द की पास चूँकि पावर ज़्यादा है इसलिए ये मसला हो रहा है, इसलिए हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। इस सोच को लेके उन्होंने इस आइडिया को फिर,
अच्छा इसमें एक सॉरी बात मैं यहाँ पे करूँ,
और ज़रूरी नहीं है कि किसी के मतलब यानी उसमें मतलब यानी इस तरह, ये काफ़ी डायनामिक चेंज,
डायनामिक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर एंटी हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल इन एनी वे व्हाटसोएवर, तो इवन इसका मतलब है कि फीमेल्स की भी वो, यानी वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे फीमेल्स को राइट ज़्यादा मिले मर्दों से।
हाँ जी, देखिए ना, जनरली जो डेफिनेशन आता है इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस आता है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये चीज़ होती नहीं होती,
वो ये होता है कि जैसे मांगती है मुझे हमें ज़्यादा राइट्स दिए जाएँ, बेनिफिट्स दिए जाएँ मर्दों से, तब जाके सेटिस्फेक्शन होगी।
दरअसल
कुछ जगहों पर
वो मतलब ये इम्बेलेंस होता है फिर, ठीक है ना, वो इम्बैलेंस शो होता है, नज़र आता है कि वो दरअसल यहाँ बात इक्वालिटी की नहीं हो रही बल्कि ये सुपरियॉरिटी की हो रही है। और कुछ फेमिनिस्ट हैं, स्कॉलरली फेमिनिस्ट, जो बाकायदा कहते हैं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट जस्ट इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, इट्स बेसिकली सुपरियॉरिटी ऑफ फीमेल, और वो बाकायदा कहती हैं। अच्छा। जो एकेडमिक्स भी हैं कुछ, तो इसमें ये बड़ा ही इनके अंदर, अच्छा
यानी एक स्कूल ऑफ थॉट है इस किस्म का,
इस तरह का स्कूल ऑफ थॉट है। और देखें इस ये बहुत ही, चूँकि ये बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी मूवमेंट है, मुराद ये है कि इसका चूंकि ओरिजिन एक तरह का नहीं हुआ, इसकी डेफिनेशंस पे आज तक एग्री नहीं किया, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आज तक डिस्प्यूटेड है, ठीक है, और हर टाइप ऑफ फेमिनिज्म डिफरेंट किस्म की इसकी डिफाइन।
ये जब बात करते हैं फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इससे क्या मुराद होती है?
लेकिन फर्स्ट वेव कोई डेफिनेशन नहीं है, फर्स्ट वेव जो है ये जो हुआ, जो इवेंट्स हुए बेसिकली वेस्ट के अंदर, ये उससे एसोसिएटेड है, क्योंकि फर्स्ट वेव में मिसाल
सफ्रेजिस मूवमेंट
जो फर्स्ट मूवमेंट है उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए, सेकंड मूवमेंट ने उन्होंने और चीज़ें चाहिए, थर्ड में अब ये जो थर्ड आजकल चल रही है उसके अंदर और एजेंडाज जो ऐड हो रहे हैं, जैसे LGBTQ वाला जो एसोसिएशन है वो थर्ड स्ट्रिक्टली,
ये पहले नहीं थी,
ये पहले नहीं थी, ये बाद में आई है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में आए, ठीक है ना, इसमें अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है 1950s से ही ऑनवर्ड्स जो है ना, ये यानी 47 टू 50s कितना के टाइम है, 50s से ही एक एसोसिएशन इन्वॉल्व थी जो कि वुमेन स्ट्रिक्टली जो कि सोशलिस्ट मूवमेंट वुमेन राइट्स की, उसका नाम था डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन।
एक मिनट मैं इससे पहले बात कर लूँ, हम पाकिस्तान में बात करें, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फेमिनिज्म के बाद, कि फेमिनिज्म की हमने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री के बाद हम अब ये बात करने लगे हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म पाया जा रहा है ये किस तरीके से, वो कहाँ से रिलेट कर रहा है, और फिर हम उसको रिलेट करेंगे औरत मार्च के साथ, कि वो औरत मार्च के साथ यही चल रहा है हमारा।
हाँ जी बिल्कुल, ठीक, देखें औरत मार्च जो है वो इस तरह नहीं आई, इससे पहले कई मल्टीपल मूवमेंट्स हैं और वो सोशलिस्ट मूवमेंट्स हैं और उससे उनका ओरिजिन हुआ, ठीक है। 1950s की जो हमारी डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन है, और उन्होंने बकायदा पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के उन्होंने बकायदा वुमेन राइट्स के वर्क किए, उसमें जो उनका पॉलिटिकल लिटरेचर होता था, जो फैलाया जाता था, जिस तरीके से, जिस मेथड से वो यहाँ पर मतलब करते थे वुमेन राइट्स को लेकर आने, वो सारे सोशलिस्ट थाट से, सोशलिस्ट लिटरेचर से आया। उसके बाद ये जो हमारी औरत मार्च में भी, ठीक है ना, इसके अंदर इनकी कुछ हमारी जो फेमिनिस्ट हैं पाकिस्तान की फेमिनिस्ट, उनमें से एक बड़ी मशहूर फेमिनिस्ट है, उनका नाम है आफिया ज़िया, ठीक है ना, और वो बात ये इसी जो हमारा जो पॉइंट है बेसिकली कि क्या औरत मार्च और वुमन राइट्स से अलहदा चीज़ें, ये बाकायदा इनकी बाकायदा बुक है जिसका नाम है फेथ एंड फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, 2017 में पब्लिश हुई है, ये फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं यहाँ की, ठीक है, पाकिस्तान की, और इन्होंने ना बेसिकली अपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर एक दिए हैं, उनमें से अगर आप ये वीडियो रन करें तो
हम वीडियो रन करते हैं, हाँ, देख लेते हैं।
हाइपोथेसिस यही है कि सेक्युलर रेजिस्टेंस पर मुज्तमिल जो इन मूवमेंट्स को इस्लामिक पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा है और करा है और कामयाब भी रही है, यू नो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल मूवमेंट्स, एंड सेंट्रल टू माय हाइपोथेसिस इज द इम्पोर्टेंस ऑल्सो of pointing out conceptual कुछ कोशिश की है मैंने clarifications के, मिसाल के तौर पे empowerment, agency and autonomy तीन बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इनके goals फ़र्क होते हैं, and I think we mix it up and NGO jargon maybe these things get mixed up but they have very different goals, just like women's rights and feminism have quite different goals, they may be converging on certain points lekin unki jo ultimate sort of methodologies may also be similar but the goals, the larger goals can be quite different and there's a departure that take place. Okay, ये ज़रूर मैं कहती हूँ कि देर इज़ एंड आई पॉइंट आउट माई आर्ग्यूमेंट या बायस कह लें आप, ये है कि आई डोंट थिंक यू कैन बी सक्सेसफुल फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क, ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड एक चैप्टर जो है उस पर मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लेके आती हूँ कि ये सिर्फ कोई ख़ास तबका नहीं है जो इस बात की कोशिश करता है, इस्लामिक फेमिनिस्ट या जो इस्लाम के अंदर काम करते हुए, वो सिर्फ ख़वातीन की तहरीक नहीं रही है बल्कि 9/11 के बाद जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि डोनर्स जो इंटरनेशनल आलमी ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड डेवलपमेंट वर्क के हवाले से बहुत से डोनर्स भी इस बात में शामिल हुए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि इस्लाम के अंदर और इस्लाम को इंस्ट्रूमेंटलाइज किया जाए।
अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, वो एक ये है कि फेमिनिज्म एंड वुमन राइट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी उनके खुद बकौल कि ये फेमिनिज्म और वुमन राइट्स जो हैं उनके डिफरेंट गोल हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन इनके इवेंचुअल गोल्स डिफरेंट हैं और
कुछ ओवरलैपिंग है, मगर
ओवरलैपिंग है, आप खुद ही देख सकते हैं कि वुमन राइट्स स्ट्रिक्टली वुमन तक रहते हैं,
ठीक है,
ठीक है, लेकिन जो फेमिनिज्म है उसके अंदर वो सारी सोशलिस्ट पॉलिसीज आती हैं, उसके अंदर ये इन्वायरमेंटल राइट्स आ गए, उसके अंदर ये वाले प्राइवेटाइजेशन ऑफ या इसमें ये डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें बीच में
सवाल ये कि व्हाई नेम्ड फेमिनिज्म,
हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ये
बात अगर वो सोशलिस्ट मूवमेंट है फॉर एग्जांपल तो उन्होंने क्यों फेमिनिज्म को, आर दे द एजेंट्स ऑफ द फीमेल एजेंट्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी और आर दे,
आप ये क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि अब
अच्छा जरा ये
21st सेंचुरी में जो है ना सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है उसकी वो इतनी ज्यादा वो नहीं है, अब अट्रैक्शन नहीं है लोगों की उसके लिए,
देखें इसकी
21st सेंचुरी में फेमिनिज्म जो है ज्यादा अच्छा लेबल है बाय बजरिए कम्युनिज्म या सोशलिज्म,
ये भी है, देखें किसी ना किसी तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करना करवाना था दोबारा से सोशलिज्म को, स्ट्रिक्ट सोशलिज्म को पाकिस्तान में, अगर उन्होंने फेमिनिज्म ले लिया तो इसमें क्या है, अब आगे भी ये जो दो पॉइंट्स हैं मिसाफिया के जो इन्होंने मेंशन किए थे कि वी कैंट वर्क इन, इन्होंने खुद एक्सप्लिसिटली अगर आप देखें इन्होंने कहा कि वी कैन नॉट वर्क इन इस्लामिक फ्रेमवर्क,
जी
खुल के इन्होंने बात की है,
यानी फेमिनिस्ट आइडियल्स और गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते
इस्लामिक फ्रेमवर्क में, ठीक है ना, और क्योंकि इन्होंने अब इसमें आप दाद दें इनकी
ऑनेस्टी
की, ठीक है ना, कि इन्होंने कहा है कि ये फेमिनिज्म का जो फ्रेमवर्क है और जो इस्लामिक फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क,
क्योंकि आई थिंक शी रियलाइजेस कि यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है,
या कॉन्ट्रडिक्शन,
या तो एक इट कैन बी आइदर,
हां जी
इट कांट बी बोथ,
इट कांट बी बोथ, और तीसरी बात इन्होंने कहा है कि दोज हु वांट टू सपोर्ट फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं मस्ट ऑल्सो सपोर्ट सेक्युलरिज्म,
बिकॉज वो इस्लाम को अगर आप हटाओगे तभी आप फेमिनिस्ट गोल्स को अचीव कर सकते हो, वो सेक्युलरिज्म के फ्रेमवर्क के अंडर हो सकता है,
इस्लाम एक यूनिक, ये यूनिक चीज़ है और स्कॉलर्स वेस्टर्न स्कॉलर्स भी इसके बारे में लिखते हैं कि ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है जिसके अंदर आप बंदे की जो पर्सनल फेथ है ना इस तरह इंटरलिंक्ड है ये पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है ना,
यानी आपका जो फेथ है
इनसेपरेबल है फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है ना,
ए फेथ की मैनिफेस्टेशन आपकी हर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ के अंदर नजर आएगी, हर वॉक ऑफ लाइफ में आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते,
सेपरेट नहीं कर सकते, और क्या
है कि
पॉलिटिक्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि देखें आप क्रिश्चियनिटी और बाकी ध्यान
और सेक्युलरिज्म तो है ही सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट,
बिल्कुल, और सेक्युलरिज्म है ही सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर वो आती हैं, और यहाँ इन्होंने खुल के कहा कि जो भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करना चाहता है दे हैव टू मतलब यानी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, अच्छा ये तीन पॉइंट्स हैं, हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि फेमिनिज्म और
औरत ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने शेयर किया है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन मर्दों के लिए और ख्वातीन के लिए जो इस्लामिक बिलीफ्स रखती हैं और चाहती भी हैं कि पाकिस्तान जो है कि इस्लामिक कंट्री रहे, मगर वो चाहती हैं कि इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, यानी ये हो नहीं सकता,
यहाँ पर एक बहुत बड़ा और औरत मार्च में भी बहुत बड़ा पोर्शन है उस किस्म की फेमिनिस्ट का था जो कि इस्लामिक फेमिनिज्म वाली,
आपको कि इसका मतलब है कि वी कैन नॉट एक्चुअली, बहुत से लोग ऐसे भी आए हुए थे हिजाब करके ख्वातीन मौजूद थी ऑन द स्टेज जो, और जाहिर है वो अपने पर्सनल बिलीफ को, और मैंने कई लोगों से हमने कम्युनिकेट भी किया पर्सनली जाके, और उन्होंने इस बात को कहा कि वी डू नॉट कंसिडर इट टू बी एंटी इस्लाम, और फिर कुछ सवाल करने के बाद एक खातून तो यहाँ तक एडमिट होगी कि अच्छा चले ठीक है मैं तो एक लिबरल, हम तो बहुत लिबरल लोग हैं तो शायद हम ना समझ सकें इस बात को जो आप बता रहे हैं, लेकिन वी डोंट डिसएग्री, बल्कि ये खातून ने कहा तो मैं तो जी बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, मतलब यहां तक का
सो एक मतलब गलती वहां सिर्फ ये है कि वो लोग इस मूवमेंट को और औरत मार्च को सिर्फ वुमेन राइट्स समझ रहे हैं,
हां ये
शायद
दरअसल एक और चीज़ है, यही जो बुक मैंने मेंशन की है ना,
वो ये रियलाइज करे कि इस वुमेन राइट्स तो शायद थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट है मगर पीछे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी आ रही हैं,
बिल्कुल, आफिया ज़िया की जो बुक है यही वाली फेथ एंड फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, इन्होंने बकायदा इसी चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट किया है और उन्होंने बताया कि ये जो इस्लामिक फेमिनिज्म है ना और ये जो ये लड़ी निकली है कि देखें हम अगर इस्लाम के उसमें पलड़े में आके इसको यूज़ करेंगे तो ये हमें कोई फ़ायदा देगा, लेकिन उन्होंने एग्जांपल बाय एग्जांपल शो किया है कि ये अनसक्सेसफुल है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्युलर तरीके से
आपको एडमिट करना चाहिए, इफ़ यू आर सिंसियर विद द मूवमेंट,
इफ़ यू आर सिंसियर विद द मूवमेंट यू हैव टू एडमिट इट, ठीक है, दरअसल ये भी देखें कि वेस्ट के अंदर भी आप देखें ये लाजमी होगा कि अगर आपने एक आइडियोलॉजी लेके आनी है, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऐसा ऐसा सारे एस्पेक्ट जो है ना वो उसमें बीच में इंटीग्रेट करने, ठीक है, मे बी फर्स्ट उस तरीके से नहीं लेंगे क्योंकि देखें फेमिनिज्म वेस्ट में भी इस तरह नहीं आई स्ट्रेट फॉरवर्ड, थर्ड वेव स्ट्रेट नहीं आई, फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, हर एक के अंदर
स्लो प्रोसेस
और स्लो प्रोसेस रहा है। देखें अगर यहाँ पर भी वो इंट्रोड्यूस होती है फेमिनिज्म, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी उसके सारे एस्पेक्ट, उनका इवेंचुअल गोल यही है। दरअसल आप वेस्ट के हालात देख लें कि उन्होंने जिस तरह वो लेके आए हैं, ठीक है, उस तरह इधर भी उन्होंने लेके आना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ फाइनल, अभी तक अगर लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ है कि औरत मार्च और क्या कहते हैं कि सोशलिज्म का कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, ये सोशलिस्ट मूवमेंट का लिंक नहीं है, तो ये जो हमने एक बड़ी चीज़ बड़ी मशहूर हुई थी कि जी फ्रांस का फ्लैग, जी फ्रांस का फ्लैग उन्होंने पकड़ा हुआ और यहाँ पर लोगों ने बहुत इशू उठाया था, दरअसल अब इसकी रियलिटी ये है कि वो फ्रांस का फ्लैग नहीं था, ठीक है, वो एक और मूवमेंट है जो कि 2018 में बनी थी, जिसका नाम है वुमन डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, और वुमन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो बकायदा अपने मंशूर के अंदर बताती है कि दिस इज़ अ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और वो उसका फ्लैग जो है 2020 वाली मार्च में भी और 2021 की मार्च में भी ये फ्लैग जो है उनका प्रोमिनेंट फ्लैग रहा था, और बकायदा ट्विटर पे इन्होंने क्लैरिफाई किया
कि
जी ये जो फ्लैग ऊपर गया
फ्रांस का फ्लैग,
ये फ्रांस का फ्लैग नहीं, इन्होंने बकायदा बताया कि हमारे कलर्स भी डिफरेंट है,
ये बल्कि जो रेड है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं,
डिस्प्ले कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो रेड साइड है, लेफ्ट की रेड साइड है, इट इज़ फॉर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये बकायदा लिखा हुआ है, ये इनकी ऑफिशियल ट्विटर में भी है, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा वाइट इज़ फॉर पीस एंड पर्पल इज़ फॉर फेमिनिज्म, ठीक है, अब ये बताएं कुछ रह ही नहीं गया यहाँ पर, ठीक है, और औरत मार्च जो है फुली इस एजेंडे के साथ जो है, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो वुमन डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट है, ये साथ साथ ये फेमिनिज्म की मूवमेंट है, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर वुमन राइट्स।
एंड वी कंक्लूड विद दैट कि ये चूंकि फेमिनिज्म की मूवमेंट है और सोशलिस्ट मूवमेंट है, अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट्स एंड द एकेडमिक्स ऑफ एकेडमिक फेमिनिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दिस मूवमेंट डज नॉट हार्मोनाइज इन एनी वे व्हाटसोएवर विद इस्लाम। तो जो लोग समझते हैं कि हम इस्लाम एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इस औरत के हुकूक की बात कर रहे हैं, उनको एक गलत फहमी ये लग गई कि शायद ये जो औरत मार्च के नाम से उन्होंने ये समझा कि शायद ये औरत के हुकूक की बात कर रहे हैं और ये औरत को शायद जो मजालिम है उनसे छुड़वाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल अगर ऐसा होता तो मुसलमान सबसे ज्यादा इनके साथ होने चाहिए थे। आगे चलते, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी डिस्कशन में हमारा टाइम लग गया। आई वॉन्ट टू गो टू द डिमांड्स एक्चुअली, हमने कुछ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 की जो इनकी नई अपडेटेड डिमांड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ ये ज़्यादा बहुत ही सटल तरीके से इन्होंने ना ये इंट्रोडक्शन की है सोशलिस्ट सिस्टम की, इन्होंने बड़े लॉ के जो है ना बहुत ही केयरफुल वर्डिंग के साथ चीज़ें लिखी हैं, और हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में सोशलिज़म की जो मूवमेंट्स हैं वेस्ट के अंदर, उनके जो एक्चुअल पीछे क्या वो क्या डिमांड करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन करने के लिए किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया,
मतलब आपके ख्याल में बहुत सटल लैंग्वेज इन्होंने यूज की है और बहुत डीट, इनके वर्डिंग्स बहुत, द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी,
चॉइस ऑफ वर्ड इज वेरी केयरफुल,
इंजीनियस
इंजीनियस, आप ये कैसे
चले जी, हम मेरे ख्याल डिमांड नंबर टू पर हम पहले बात कर लेते हैं, डिमांड्स पे नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल हम सेलेक्टिव दो तीन हम इसमें डिमांड्स पे चले जाते हैं। मैं पहली डिमांड नंबर टू को आपके सामने पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, देन वी विल डिस्कस द फर्स्ट। द डिमांड नंबर टू इज वी डिमांड एन अर्जेंट एंड टू एफर्ट्स टू privatize the healthcare system, which is turning healthcare into a for-profit business rather than public service. We assert universal healthcare for all individuals to be the state's responsibility. Now, apparently, it looks very fine that privatization of health is not necessary because if it is privatized, then obviously what
will happen?
Affordability will be a problem. It wouldn't be across all the society ke jo pure levels hai, un tak nahi pahunch sakega. So what do we actually want to talk about it?
Achha, hum bas isme ye cheez darj karna chahte hain ki ye jo privatization of के खिलाफ होना, हर किस्म की चीज़ के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होना, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें, ये दरअसल ये स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोच टू थिंग्स है।
सो यू आर सेइंग कि बेसिकली ये उसी बैकग्राउंड से बात
हो रही है। तो इससे मुराद बस यही है कि उसकी बैकग्राउंड सोशलिस्ट है, ठीक है,
लेकिन गोल्स हाँ वो
दुरुस्त है
इसमें, हाँ जी, इसमें कोई इतना मसला नहीं। आप हेल्थ केयर सिस्टम को अगर आप पब्लिक सेक्टर से अप्रोच करें और फिर पब्लिक सेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेनिफिशियल चीज़ है। और मतलब यानी इवन दो अब देखें इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें पब्लिक भी हैं, ठीक है ना, वो उधर बैलेंस लेके चलता है इस्लाम दोनों चीज़ों का, लेकिन इसके अंदर स्ट्रिक्टली जो है वो सारे का सारा जो है ना वो مطلب یعنی پبلک اور پبلک ہو,
یعنی
اسلام اس چیز کو بات کرتا ہے کہ یہ چیز پرائیویٹائز ہونی چاہیے لیکن ریگولیٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ کرے, گورنمنٹ جو ہے اپنے جو گیون انسٹرکشن یہ گائیڈ لائنس کے اندر وہ چیز آپریٹ کر سکتی ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن میں ایز لانگ ایز کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو تو دیر از نو پرابلم واٹس ایور ان دیٹ.
ہاں جی,
اچھا جی, میرا خیال ہے فورتھ پہ جاتے ہیں, وی گو ٹو دیٹ ان شاء اللہ. وی اسرٹ دیٹ دی کارسرل اینڈ پیونیٹیو میجرز such as capital punishment and chemical castration does little to prevent gender based violence, nor is there enough evidence to show that it is deterrent for sexual crimes. We demand meaningful structural reform that overturns patriarchal structures such as the legal system rather than short term measures such as the provision for chemical castration as part of the anti rape ordinance 2020.
acha ye badi interesting kism ki inhone statement di hai. ab iske andar inhone technically ye baatein jo hai na badi مطلب یعنی آپ کہیں دقیق طریقے سے انہوں نے,
سوری میں اس سے پہلے آپ سے بات لینے پہلے میں ان پہ احمد بھائی سے آؤں گا, بیکاز دس از آئی تھنک ہز ڈومین ایز ویل ان ٹرمز آف لا اینڈ لیگل ورڈنگز. ہاؤ ڈز آپ کے خیال میں یہ جو قانون جو انہوں نے ورڈس استعمال کیے ہیں, آر دے ایکچولی اسپیکنگ اگینسٹ دا کیپٹل پنشمنٹ؟
دیکھیں اگر ہم اسٹرکٹلی ان کے ورڈس پہ لیں تو نہیں, مگر وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کارسرل پنشمنٹس جو ہیں یعنی جیل ڈالنا اور یعنی امپریزنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تو بہت ان ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. ڈیٹرنٹ ہیں یہ چیزیں, یہ لاز ہیں ہی اس لیے, کارسل پنشمنٹس ہوتی اس لیے تاکہ سوسائٹی میں ایک ڈیٹرنٹ رہے. مگر انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس اور سیکشل کرائم سے ایسوسیٹ کیا. تو ہم فار ایگزامپل بلیو کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس اس لیول تک جائے کہ ریپ ہو یا اس کے رزلٹ میں کوئی قتل ہو جائے تو اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور پبلک نے بہت واضح ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پنش کیا جائے, پبلکلی ہینگ کیا جائے. اب لگتا ایسا ہے کہ یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا اس طرح کی میجر سے کہ اسٹرکٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے, کوئی بھی اگر اس قسم کا کرائم کرے اس کو اسٹرکٹ پنشمنٹ. کیپٹل پنشمنٹ از دا سب سے ہائیسٹ تھریش ہولڈ آف پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اس چیز کے اوپر, مگر اس کے اوپر بھی ایک اعتراض ہے. وہ اعتراض ایسا لگتا ہے اس لیے کیونکہ جدھر سے یہ اپنے کانسیپٹس لے رہے ہیں وہ شاید ایک ویسٹرن نوشن آف ہیومن رائٹس ہے, اور ویسٹرن نوشن آف ہیومن رائٹس کے اندر کیپٹل وہ اینٹی کیپٹل پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, فار واٹ ایور ریزن. تو دس سیمس ٹو سجیسٹ کہ ایک اور ایویڈنس ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ کہیں اور سے اور کسی اور کلچر سے لی جا رہی ہیں, کوئی اور جو ہے نا پیچھے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا ڈیمانڈ کرنا کیا نہیں.
دیکھیں یہ اسٹرکٹلی ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جی کھل کے کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی
انڈیکیشن دے
کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز انفیکٹو, ہم سمجھتے ہیں انفیکٹو ہے اور اس کے لیے ڈیٹا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ اوپر نیچے کی لینگویج ہے. دراصل ہمیں پتہ ہے اسٹریٹ فارورڈ کے اسلام کے اندر جو ہے جو اب اس طرح کے جو ہیوی قسم کے سیکشل کرائمس ہیں اس کے اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے اور دا چکی بھی ہے
اور دے چکی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, جا سکتی ہے,
بالکل دی جا سکتی ہے. اب انہوں نے یہ چیز وہاں سے لی ہے اور پھر اس کے اندر وہ کرنے کی ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے کیا یہ ڈیٹرنٹ ہے؟ نہیں ہے. نہیں جی, یہ باقاعدہ ڈبیٹیبل معاملہ ڈسکشن ہے باقاعدہ, کیونکہ اس کے اوپر اسٹیٹس موجود ہیں دونوں سائڈوں پہ, ٹھیک ہے نا. اور باقاعدہ ہمارے پاس اور آج کل تو دراصل کم ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس کیپٹل کی افیکٹونیس کے اسٹیٹس کم ہے کیونکہ آج کل زیادہ تر جگہوں پر اپلائی نہیں ہوتی, لیکن جن جگہ اپلائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر سنگاپور وغیرہ میں اس کے اندر اس کی افیکٹونیس واضح ہوتی ہے,
ٹھیک ہے. اور
اور ایک اور مزے کی میں کہوں, اس میں مزے کی یہ چیز ہے کہ ایک اور ٹائپ آف فیمنزم بھی ہے جس کا نام ہے کارسل فیمنزم, ٹھیک ہے, جو کہتی ہے کہ سیکشوئل کرائمز اور ان چیزوں کے کرے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. انہیں کے اندر ہی ڈویژن
لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ پبلک ہینگنگ کی بات کی تھی انہیں عورت مارچ کے اندر, لیکن وہ ان کے آفیشیل لوگ نہیں تھے,
آفیشیل لوگ
جو ان کے ساتھ آنے والے تھے,
لیکن آفیشیلی وہ یہ کیوں نہیں چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ اگر یہ چیز ہو جائے گی نا تو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہمارا گول اچیو ہو گیا. نہیں, ان کا یہ گول نہیں ہے, ان کا گول یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جائے, پیٹریارکل اسٹرکچر کو چینج کیا جائے. آپ نے کہا ہے نا کہ ہمیں شارٹ, یہ تو شارٹ ٹرم وہ ہے سولوشن, ہمیں لانگ ٹرم سولوشن چاہیے ہمیں پیٹریارکل سٹرکچر سچ ایز دا لیگل سسٹم. اب میرا مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ لیگل سسٹم کے اندر ججز کی ریپرزینٹیشن جو ہے وہ جینڈر اکوالٹی ہونے یعنی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے عورت ججز کے لیے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ والی پنشمنٹس دے دیں گے نا تو ہماری بہت زیادہ جو آڈینس ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جائے گی اور پیچھے ہٹ جائے گھر بیٹھے, ہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ میجرز لے لیے بڑے سخت اور انشاءاللہ اس سے جو ہے ایک ڈیٹرنٹ قائم ہوگا, مگر ان کے لیے پورا نہیں ہے. وائی؟ بیکاز دی ایجنڈا از مچ گریٹر دین دیٹ.
اچھا یہ میں ویسے میں ایک ایڈ کروں, کارسرل پنشمنٹ ظاہر ہے وہ پنشمنٹس ہوتی ہیں جو پرزن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے کہ وہاں پہ بھی یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وائف کو نا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو پرزن کے اندر پھینکا گیا مطلب فار اس ریزنس کی وجہ سے. سو وی سی دیٹ کہ پبلک ان دا پاسٹ ہمارے یہ سسٹم تھرو آؤٹ دا ہسٹری رہا ہے جہاں پہ سیکشول کرائمز کی جو ہے کارسرل پنشمنٹ اور خاص طور پہ کیپٹل پنشمنٹ, تو اسلام بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے محاربہ کی صورت کے اندر. اگر فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جو عورتوں کے ساتھ بار بار زیادتی کرتا ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے پوری سوسائٹی کے اندر ایک امن و امان ختم ہو رہا ہے اور ایک دہشت گردی پھیل رہی ہے, سو اسلام تو کہتا ہے اس کو کڑی سزا دی جائے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی
بالکل.
That's the point. میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. I think that's pretty much clear about demand number 4. Demand number 7 کے اوپر میں جانا چاہوں گا. That's related to the drug use. وہ کہتے ہیں کہ drug use as a public health issue not a legal one. We assert that drug addiction requires a rehabilitative approach that cannot be achieved through criminalization and the carceral justice system. The public health sector must step into treat drug addiction with proper care and mental health support so that individuals can be rehabilitated back into the society. جی
اچھا اچھا, فیمنزم کے ساتھ جب بھی آپ یہاں پر ڈبیٹ کرتے ہیں نا ان معاملوں پہ, لا ورسز پروسیجرل لا, یعنی جو اپلائڈ لا ہے ورسز جو آئیڈیل لا ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس میں ہمیشہ یہ فرق ہوتا ہے. جہاں پر اگر اپلیکیشن میں مسئلہ آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لا اٹ سیلف میں مسئلہ ہے کئی دفعہ. تو اس کی بھی اگزامپل ایک یہاں پر آ رہی ہے, وہ اس طرح آ رہی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرگ یوز ہے نا وہ اس کو یہ پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یہ لیگل مسئلہ نہیں ہے, اس کو کرمنلائز کرنے سے آپ کا کام حل نہیں ہوگا. اچھا یہ بات آئی کہاں سے ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی دراصل لیفٹ والی پالیٹکس ہے یہاں پر. وہاں پر بھی یہ نا ایک نئی سچویشن جس میں وہ کہتے ہیں لیگلائزیشن آف ویڈ, لیگلائزیشن آف مطلب ڈرگز, اور وہ اس میں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ڈرگ کے اوپر جو اس کے پیچھے بہت زیادہ ہسٹری ہے, اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو کرمنلائزیشن کی وجہ سے نا آپ بلکہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کرمنلائز کر
کے وہ روک تو سکتے نہیں ہیں, اسے
کہتے ہیں روک تو آپ سکتے نہیں ہیں, تو ایسا کریں کہ اس کو
ریگولیٹ کر دیں,
ریگولیٹ لیگلائز کر کے ریگولیٹ کریں, ٹھیک ہے نا, یہ وہاں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی ٹرمز اس طرح یوز کیے ہیں کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینٹ بی اچیو تھرو کرمنلائزیشن سے نہیں ہو سکتی, تو اس کو ریہیبلیٹیٹیو اپروچ, بڑا انہوں نے نا اس
طرح
ریہیبلیٹیشن کو آگے رکھ دیا کہ جی ہماری اصل چیز ہم ریہیبلیشن چاہ رہے ہیں بندوں کی, ٹھیک ہے نا, اور دراصل یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ پیچھے جو ہے لیگلائزیشن اور ڈرگز والا معاملہ بھی ہے, ٹھیک ہے, دراصل یہ چیز یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سے ہم بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کرتے, ہونی ہی ڈرگز کے کیوریٹیو سسٹم جو ہے پبلک ہیلتھ کے تھرو ہی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کا کیٹرنگ ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لیگلائز کر دیا.
مثلا جو بندہ اگر مطلب میں اگر ان سے ایک نارمل پرسن کے طور پہ سوال پوچھوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کرمنلائز نہ کیا جائے, تو میں کہتا ہوں پھر اجازت دے دی جائے اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے, سوال یہ ہے. What do they mean? مطلب
ایک احتمال بھی ہو سکتا ہے جن کی اس ڈیمانڈ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں, ڈرگ ایڈکشن ریکوائرز اے ریہیبلیٹیٹیو اپروچ اینڈ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کرمنلائزڈ. ڈز دیٹ مین کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ڈرگز اٹ سیلف شوڈ ناٹ بی کرمنلائزڈ اور ڈرگ ایڈکشن یعنی ایڈکٹس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ ایڈکٹس کی بات ہو رہی ہے نا, جو لوگ یعنی ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو کرمنلائز کرنے کے بجائے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے, تو یہ ڈیمانڈ فیئر ہوگی.
ہاں جی,
اگر تو یہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یار یہ جو سافٹ ڈرگز ہیں ان کو آپ لیگلائز کر دیں, تو وہ پھر شاید
دیکھیں ہم تو یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی, ڈیمانڈ
لکھی نہیں ہے
دیکھیں, لیکن جو ایکچولی جو ہم یہاں شروع سے جو بات کریں کہ پیچھے اس کے کہاں سے اس کی جو سپورٹ ہے,
ہم ہمارا بھی پرسنلی بھی ہمارا ایک ڈسٹرسٹ ہے اس موومنٹ کے ساتھ,
اس موومنٹ,
اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود دکھایا ہے اپنی, آپ یہ فلیگ کی اگزامپل لے لیں, بہت زیادہ اور اگزامپلس بھی ہیں कि इन्होंने दिखाया कि ये ऑर्गेनिकली एक पाकिस्तानी ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है ऑफ वुमेन राइट्स. अगर वो होती तो शायद हम ज़्यादा इसको सपोर्ट करते. ये एक बोरोड आइडियोलॉजी है और वहाँ से क्यूज लिए जा रहे हैं, उसी तरह मूवमेंट स्टार्ट की जा रही है और शायद वहीं लेके जाना चाहते हैं.
दरअसल आप तो देखें ना,
मिसट्रस्ट
बिल्कुल. ये फेमिनिस्ट जो इनकी लीडर्स हैं, जो इनके स्कॉलर्स हैं, आप देखें कि वो उनकी जो स्टडी है वो
उनकी वो क्लियर भी कह रहे हैं.
दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये जो बात इन्होंने की कि ड्रग एडिक्ट्स के मामले में देखें, अगर आप करंट सिचुएशन भी देखें पाकिस्तान में, क्या हम इसमें क्या करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स के मामले में जो कि एक्चुअल एडिक्ट होता है, हमारे पास यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, सारा कुछ है हमारे पास, बल्कि उनको वहाँ पर इनकरेज किया जाता है, भेजा जाता है, वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है ना. क्रिमिनलाइजेशन जो होती है ना, वो ज़्यादातर इसीलिए होती है कि जो ड्रग के सेल है, परचेज है, और ये हम इस डिस्ट्रस्ट की वजह से चाह रहे हैं कि ये जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इसकी नेक्स्ट फॉर्म में ना पहुँच जाएँ जो कि आजकल वेस्ट में स्टेपिंग स्टोन ना हो टू लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स की तरफ.
मगर जहाँ तक फॉर एग्जाम्पल ने ये लिखा हुआ था, पब्लिक हेल्थ सेक्टर मस्ट स्टेप इन टू ट्रीट ड्रग एडिक्शन विद प्रॉपर केयर एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट सो दैट इंडिविजुअल्स कैन बी रिहैबिलिटेटेड बैक इनटू सोसाइटी. तो ये अच्छी,
लेकिन अब टाइटल भी देखें, ड्रग यूज एज अ पब्लिक हेल्थ इशू नॉट अ लीगल वन. ड्रग यूज की बात हो रही है,
ड्रग यूज की मतलब जनरल है,
ठीक है ना.
हेडिंग जो है डिफरेंट है,
नॉट जस्ट ड्रग एडिक्ट्स. यहां देखें आप, ये यहां उन्होंने वो चीज़ रखी हुई है बीच में.
आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत से लोग क्योंकि ये जो ज़ाहिर है, जैसे हम आप माशाल्लाह डिस्पाइट योर स्टडीज़ इन ह्यूमन राइट्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड आप लोगों की माशाल्लाह रिसर्च के बावजूद हम लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं. एंड आई थिंक वी कैन नॉट कंक्लूड समथिंग फॉर श्योर. हाउ कैन दोज पीपल हु आर जस्ट पब्लिक और जो औरत के साथ एक हमदर्दी रखते हैं, जो औरत के हुकूक के लिए बात करना चाहते हैं. मैंने तो बल्कि देखा कि औरत मार्च पे कुछ रिलीजियस तबके के लोग भी आए हुए थे, एंड दे वर लाइक मुफ्ती साहब भी एक आए हुए थे.
मुफ्ती साहब छोड़े, एक बंदा मैं गनवा रहा था कि उसने 20 उम्रे किए हैं, ये किए वो
exactly. अब वो बेचारे हम उनके बारे में अज्यूम नहीं कर सकते कि वो इन चीजों,
उनको सवाल करने चाहिए उनको, हमारे शो का उनको कोई फायदा होना चाहिए कि सवाल करें, पूछें यार आप ये बात क्यों कह रहे हैं, इससे आपकी क्या मुराद है, ये वाला क्या सवाल करें
हमसे. अच्छा जी, नाइन्थ डिमांड की तरफ आते हैं हम इंशाल्लाह. दिस इज मेक कंसेंट बेस्ड एजुकेशन मैंडेटरी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स. दैट्स द टाइटल एंड वी गो थ्रू द डिटेल. वी डिमांड दैट कंसेंट बेस्ड लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल करिकुलम फॉर चिल्ड्रन टू असर्ट बॉडीली अटोनमी एंड प्रिवेंट रैम्पेंट चाइल्ड अब्यूज. सो दिस इज बेसिकली डिमांड नंबर 9 जो उसका क्रक्स है. सो वट इज consent based life skill based education LSPE, right?
देखें यहाँ पर भी हम एक assumption लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी जो clarity है वो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद जो हमने ये ज्यूम किया कि यहाँ पर भी जो जो नई वेव है जिसके अंदर वो सेक्स एजुकेशन इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है. सेक्स एजुकेशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट एन इशू, ठीक है, अगर सही तरीके से होती है, सही मीडियम्स के थ्रू होती है और जिस उनका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, इस्लामिक तरीके से भी हो सकती
है, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं
उनको मद्देनजर रख के, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्पेशली जो है इसकी वजह से अगर ये प्रॉपर एजुकेशन हमें यहाँ पर कुछ चाहिए, इस चीज़ की रेवोल्यूशन वाकई में चाहिए कि जिस बेसिस पे हम इन चीज़ों के मसले जो हैं कम कर सकें, जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ के मसले हैं, और उसमें वो हो सकता है ये. लेकिन यहाँ पर जो हम इस, चूँकि हम इस मूवमेंट की मिसट्रस्ट की बेसिस पे यहाँ बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो यहाँ पर साथ इनकी सेक्स एजुकेशन में LGBT का मामला आता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर जो औरत मार्च में भी LGBT के स्लोगन्स, प्ले कार्ड्स एंड एवरीथिंग उसके रिप्रेजेंटेटिव और ये वो चीज़ें, दरअसल ये चीज़ें उस लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाना जिस तरह की वहाँ पर रेस्ट में मैंडेटोरी किया गया है. बाकायदा ब्रिटेन में स्कूलों में ये चीज़ें मैंडेटोरी हैं, उस वजह से बच्चे बाकायदा कन्फ्यूज होते हैं अपने जेंडर के मामले में, अपनी सेक्शुअलिटी के मामले में, और मतलब यानी वो चीज़ें डिफरेंट उसमें उनके लिए वो एस्पेक्ट खोलते हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स जिना और इस जिनाकारी की तरफ और चीज़ों की तरफ, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम
सेक्सुअलिटी की तरफ,
हाँ जी, और अगर हम इसको सही तरह केटर नहीं करेंगे, सही मीडियम के थ्रू नहीं लेके आएंगे, ठीक है, तो हम इस वजह से हम चाहते हैं कि
वो अच्छा है. ये सवाल ये है अहमद भाई, यहाँ पे इन्होंने इस लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन LSPE, मतलब टाइटल तो बड़ा अच्छा है, और ये यूनिसेफ की तरफ से इंडोर्स्ड एक सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात की जाती है, इसी तरीके से प्यूबर्टी के हवाले से बेसिक एजुकेशन है, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, इसी तरीके से वायलेंस जो है, खासतौर पर सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ ये है, मतलब वर्ड मतलब टर्म तो बड़ी अच्छी है, LSPE, एजुकेशन एक लाइफ स्किल बेस्ड, लेकिन कंसेंट बेस्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेंट बेस्ड?
अच्छा, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मुझे कोई क्लैरिटी नहीं हुई कि व्हाट डू दे मीन बाय कंसेंट बेस्ड,
क्योंकि ये तो बड़ी ये तो मेरे ख्याल इसमें कंसेंट वाली क्या बात है?
देखिए नहीं, इसमें अब ज़ाहिर है इनसे पूछना चाहिए कि इनसे क्या इनकी मुराद है, मगर अगर आप आगे जाके देखें ना उन्होंने क्या लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि फॉर चिल्ड्रन टू असर्ट बॉडीली ऑटोनॉमी एंड प्रिवेंट रैम्पेंट चाइल्ड अब्यूज, वो ये एस्पेक्ट है कि बच्चों को बताया जाए कि उनको कोई टच नहीं कर सकता. ये असर्टिंग बॉडीली ऑटोनॉमी जो है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत
इम्पोर्टेंट है चाइल्ड अब्यूज के बारे में.
हाँ जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये चीज़ बताई जाए कि नो वन इज़ अलाउड टू टच यू और कम इन योर पर्सनल स्पेस, जो आपकी एक पर्सनल स्पेस होना, हमें अपने बच्चों को और बच्चियों को ये बताना चाहिए. बिल्कुल. अब कंसेंट से मुझे नहीं पता क्या मुराद है इनकी, खास तौर पे बच्चों के मामले के अंदर, क्योंकि दीज चिल्ड्रन कांट कंसेंट टू एनीथिंग. ठीक है ना, सो व्हाट डज दैट मीन और ये हाउ डज इट tie in with these two things, I don't really know.
दरअसल consent base, आपको पता है कि जो इनके जो west के अंदर primary understanding होती है consent की, वो ये होती है कि जितने भी आपके sexual morality है, जो 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 भी उनके relationships हैं, वो उनका primary motivator consent है. ठीक है, अगर दो राजी हैं आपस में तो बस वो मतलब ये नहीं करें. ये एक वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप और ये है, वहाँ से आई है. जो हमारे यहाँ बकायदा शादी का कॉन्सेप्ट होता है, शादी हमारा कंसेंट है. ठीक है, एक किस्म का कंसेंशुअल कॉन्ट्रैक्ट है और उस बेसिस पे जो है हमारे वो होते हैं. इसके अंदर अगर आप कंसेंट बेस को यानी उससे बाहर ले आएंगे, तो उससे मुराद ये है कि आउट ऑफ वेडलॉक भी जितने किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी भी एजुकेशन बीच में आती.
हाँ, ये
असल में इसका अगर आप उर्दू देखें ना, ये तो इंचल इंग्लिश में है. हम मुतालबा करते हैं कि ज़िंदगी में काम आने वाले हुनर और रजामंदी पर मुश्तमिल तालीम को, तो यहाँ पे तो LSBE वैसे ही खत्म हो जाता है.
रजामंदी
पर मुश्तमिल तालीम, तालीम से मुराद क्या है आपकी? ऑब्वियसली दैट लीड्स टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट आई थिंक. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कंक्लूड एनीथिंग.
मीन कि अगर कोई बच्चा कहे मैंने पढ़ना नहीं, तो कहेंगे अच्छा ठीक है
ना पढ़ो. आई डोंट थिंक इज दैट,
माने का कंसेंट उसकी वहीं पर,
उसकी रजामंदी नहीं है तालीम के लिए. ठीक है, आई
डोंट थिंक
दैट्स. हां, तो
ये
बच्चा वहीं कह दे कि जी मैं कंसेंट नहीं करता ये पढ़ने से. ठीक है, तो वो अब क्या करेगा?
कोई बच्चा नहीं करता पढ़ने. तो आई थिंक वी नीड टू क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट एज़ वेल. आई थिंक लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट. Inshallah, we'll conclude with that. 11th जो है वो है, तमाम all individuals should have access to safe abortion facilities, information and bodily integrity. Prices of menstrual hygiene products should be subsidized to be easily accessible to all.
हाँ जी, इसमें safe abortion facilities, देखिए जहाँ तक मुझे खैर ज़्यादा फील्ड में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर जो अबॉर्शन होता है वो हॉस्पिटल्स में ही होता है. हॉस्पिटल के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई क्लिनिक.
हाँ जी, देखिए वो जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी एक चीज़ होती है जो कि मतलब गांव और इन इलाकों में होता है, और वो जो है बाकायदा उनको उनके ऊपर वर्किंग हो रही है. पाकिस्तान में उनकी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि उनके पास
अच्छा यानी रूरल एरियाज़ की बात,
ये रूरल एरियाज़ में भी अगर आप देखें ना, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो होती है ना, उसके अंदर वो कहते हैं वो एक जगह होती है जहाँ पर अबॉर्शन या ये वो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं. ठीक है ना, इन केस अगर मदर को, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली वो एक किस्म का मटर्निटी वार्ड के तौर पर वर्क करता है, कि अगर किसी मदर और न्यू बॉर्न का जितना भी वो उन्होंने वो करवानी होती हैं, क्या कहते हैं प्रेगनेंसीज, तो वो सारी वहाँ पर होती हैं. ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पर हॉस्पिटल अवेलेबल ना हो. ठीक है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ कह रहे हैं कि जी अबॉर्शन फैसिलिटीज़ अलहदा से हों, अबॉर्शन क्लिनिक्स की गालिबन ये अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ से आ रही है.
यानी इन अदर वर्ड्स, उनको हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट ना किया जाए. वजह क्या है? क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, एंड आई थिंक इट्स अ प्लेस कि जहाँ पे आपकी ऑब्वियसली जब भी ट्रीटमेंट होता है तो यू हैव अ पब्लिक, यानी आपका हेल्थ रिकॉर्ड बनता है, एंड आपसे कुछ पूछा जाता है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम और क्या मामला है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं. एंड अबॉर्शन फैसिलिटीज़ आर स्पेसिफिकली, आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू एलिनेट विद फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स, then it is something like ke jisme sirf aap jaye aur mujhe ye nahi chahiye and that's it and it's done it's taken care of.
magar ye bhi ho sakta hai ki jaise hospital hamare paas hamare bade shaharon mein hai aur jaise aapne kaha rural areas mein shayad is cheez ki agar zarurat ho to wahan pe specific facilities banani chahiye.
dekhen dekhen abortion ki facility
ek hota hai reproductive jaise unhone pehle baat ki thi na ki reproductive
jaise for example ct scan mri wagera
haan ji haan ji
ye alag cheez hai yahan pe specifically abortion facilities se murad
unhone kaha abortion facility
yahan pe bhi sawal uthega na question mark hai ki specifically abortion facilities से आपकी क्या मुराद है.
हाँ जी देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी वो होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें किटर होती
हैं. देखो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए,
पैदाइश भी है, पैदाइश भी है और ये माँ को नुकसान है उसका.
हाँ जी और इन केस उस वक्त वहाँ पर अबॉर्शन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है ठीक है. लेकिन यहाँ पर इनका मकसद है अब सीधी सी बात है कि जो हम पीछे अज्यूम करते हैं वो यही है कि जी इनका
आउट ऑफ वेडलॉक
जो शादियाँ होती हैं उसके
बाद शादी नहीं आउट ऑफ वेडलॉक
आउट ऑफ वेडलॉक जो रिलेशन होते हैं उसके रिजल्ट में जो होते हैं मसाइल उनका हल जो है सीक्रेटली और क्योंकि वेस्ट के अंदर अबॉर्शन क्लिनिक्स में यही होता है कि आपके आपको अनोनमसली वहाँ पर आप अबॉर्शन करवा सकते हैं.
इसमें अहमद भाई इसमें बॉडीली इंटेग्रिटी इन्फॉर्मेशन एंड बॉडीली इंटेग्रिटी जिसका उन्होंने तर्जमा किया है और सबके पास जिस्मानी खुद मुख्तारी होनी चाहिए.
ये जो औरत माज का एक फेमस स्लोगन भी है ना ये भी मेरा ख्याल ये बॉडीली इंटेग्रिटी जो है ना आई थिंक ये प्रो चॉइस वाली बात कर रहे हैं. प्रो बेसिकली अमेरिका में डिबेट है एक प्रो लाइफ प्रो चॉइस प्रो. अब ये देखिए स्लोगन्स कैसे यूज़ करते हैं दोनों बड़े अच्छे स्लोगन है प्रो लाइफ प्रो चॉइस मगर दोनों ऑपोजिट बात करते हैं. प्रो लाइफ से मुराद ये है कि जो बच्चा है माँ के पेट में उसकी उसकी वो जिंदगी है उसकी और उसको होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी यानी अबॉर्ट नहीं करना चाहिए. और प्रो चॉइस ये उसकी मर्जी बॉडीली ऑटोनॉमी है और इंटेग्रिटी है उसकी. आई थिंक इन्होंने जो उर्दू में जो उन्होंने यूज़ किया वो क्या टर्म यूज़ किया है
जिस्मानी खुद मुख्तारी.
खुद मुख्तारी ठीक है. खुद मुख्तारी यही हुई ना कि ऑटोनॉमी आपकी अपनी बॉडी के ऊपर और आप यानी प्रो चॉइस वाली बात है.
लेकिन हाँ अब इसमें ना दो कन्फ्लेशन चीज़ों की होती है कन्फ्लिक्ट आता है. एक है कि बॉडीली इंटेग्रिटी और ऑटोनॉमी एक इस सेंस में भी है कि जी किसी सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ के अगेंस्ट ठीक है ना. और जब भी हम इन्हें पॉइंट आउट करते हैं ना कि आप वो दूसरी चीज़ चाहते हैं मतलब यानी प्रो चॉइस वाली चीज़ चाहते हैं ये फॉरन शिफ्ट करते हैं कि ये शिफ्ट
अगर इधर इन्होंने अबॉर्शन फैसिलिटी के साथ जोड़ा हुआ है.
हाँ हाँ इसको,
अच्छा, तो इसको फिर यहाँ पे हरासमेंट की तो बात ही
हमने एक्चुअल में देखा है. हमने एक्चुअल में औरत मार्च में हमने जब ये उनसे पूछा कि इसका मतलब तो अबॉर्शन है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इससे मुराद वो नहीं है. इससे मुराद ये कि अगर मेरे ऊपर कोई जो है ना यानी जिना रेप वगैरह के केसेस फॉर एग्जांपल उसके हवाले से मतलब
ये शिफ्ट करते हैं मेरे बाकी में शिफ्ट करते हैं ये वो जब इनको लेकर उन्हें जी आप उस चीज़ की बात करें कि हरामकारी के रिजल्ट में आप ये कर सकें जो अपनी वो चीज़ कर सकें तो फौरन कहते हैं नहीं नहीं ये इस वजह से क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट है कि मेरी जिसम है तुम्हारा कोई हक नहीं है. और ये बात ठीक है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन असल में हमें मसला ये इस उस वाले एजेंडे से नहीं है हमें इस वाले एजेंडे से है ठीक है ना जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई आपकी जिसम जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ है आप उस तरीके से इस्तेमाल करें.
जी मेरा ख्याल है कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ इंशाल्लाह आज के शो को कंक्लूड करते हैं. अहमद भाई आपसे दो तीन मैं कहूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस बारे से. जी
मैं तो मेरा कंक्लूजन ये वही होगा जो पिछले शो में भी हमारा था कि मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादा एजुकेट हो इस मामले के अंदर ख़ास तौर पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में कि वो किधर से शुरू हुई और आज थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज़म जो है वो किधर है और हमारे लोकली पाकिस्तान में ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. स्पेसिफिकली जो हमने डिमांड्स पिछली दफ़ा भी देखी थी इस दफ़ा भी देखी हैं इसके अंदर जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जेन्युइन क्वेश्चंस जो मेरे जेन के अंदर भी और आई एम श्योर जो सिर्फ ये डिमांड्स देख रहे होंगे उनके जेन में भी आनी चाहिए क्वेश्चंस कि यार ये आपने ये चीज़ क्यों ऐड की है इस वर्ड का क्या मतलब है. आई थिंक बिफोर हम उस बैंड वैगन पर चढ़ें और उसको सपोर्ट करना शुरू करें उसके झंडे लगाना शुरू करें हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं.
जज़ाकअल्लाह जी हमास भाई आपकी तरफ
है. देखें यहाँ पर हमारे कंक्लूजन बहुत ज़ाहिर हो जाना चाहिए इसके बाद ये कि औरत मार्च और वुमन राइट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ठीक है. वो सीधी बात यह है औरत मार्च एक फेमिनिज़म सोशलिज़म और वेस्टर्न मूवमेंट है उसकी बेसिस पे ये एक मूवमेंट चली है ठीक है. इसकी पूरी हिस्ट्री अलग है इसके पूरे राइटर्स अलग हैं इसके पूरे एकेडमिक्स अलग हैं इसकी जो डिमांड्स हैं उनका वुमन राइट्स से कभी बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं होता और कभी बहुत ताल्लुक होता है. तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर सोशलिज़म को इंटीग्रेट किया जाता है आपकी पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स में और हर जगह ये वो उसमें और ये औरत मार्च के और या फेमिनिज्म के एजेंडे के अंदर आता है ठीक है ना. اور وومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے,
جزاک اللہ خیر. میں اس کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے, نظام دیا ہے, جس میں خواتین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ اس کی ایویڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم جس جینڈر, جو جینڈر اسلام قبول کر رہا ہے وہ فیمیلز کا ہے. اور ون آف دا ریزنز وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ از بیکاز دے آر آف کورس دے نو دا ریالٹی اینڈ دا ٹروتھ, دا پروٹیکشن اینڈ دا سیفٹی اینڈ دا رائٹس دیٹ اسلام گیوز ٹو دیم, اور وہ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں اور سے نہیں مل سکتے. لیکن اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے, پرسیو کرنا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت مارچ جو ہے اٹ سیلف وہ صرف وومن رائٹس کی موومنٹ نہیں ہے, اٹس اے فیمنسٹک موومنٹ. اور پاکستانی اکیڈیمک فیمنسٹ اس بات کو بار بار اوپنلی پروپگیٹ کر رہے ہیں, اور شاید ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ کو ریلیٹ ود اسلام, اٹ ہیز اٹس اون سسٹم, اٹ از یو نیڈ ٹو بی سیکولر ان آرڈر ٹو اڈاپٹ فیمنزم, especially that feminism which is actually being propagated in Aurat March. So all those people who are, they want Islam in their deen, they Islam in their lives, meri aap sab se request hai, please sawalat uthayein, question karein, apne aap ko educate karein, aur waqai agar aap deen chahte hain to this is not the solution. Iske sath hum apni baat ko khatam karte hain, milte hain inshallah agle episode mein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.